तो अभी वो शोभित नहीं होता, उसकी शोभा नहीं होती यदि भगवान को अर्पित नहीं होता।
नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यमन्ये गौरवस्तुते हे कृष्णसन्नासिं दीनबन्धो जगत्पते गोपेशभूषिता सन्त राधासन्तमन सप्तकनिशं गौरवन्दे राधिकामेश्वरी आदेवी का कुंभर गजगजयाचराचारिंपस्तूरवी मंदीर गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण आज सत्संग में चैतन्य से रामानंद संपाद का कुछ अनुशीलन कर रहे हैं। अब हमने बताया एक उसको चलना मिलना ग्रहण निश्चाय भगवान नंद था फलपति। इसमें बताया महत्वपूर्ण लोग गृही मनुष्यों के स्तर पर और जो गृही और अत्यंत गृह में आसक्त और दीनहीन है उनका निश्चाय उनका परम मंगल साधन करने के लिए वो जाते हैं, अपना कोई भी उनका काम नहीं। तो इसके हमने दो अर्थ बतलाए गृहिणन और दीन के प्रथान का पांडु जी बदलाव तो क्या क्या नहीं था नहीं है सभी जाति ऐसे खड़े हो और कल से आने नहीं देंगे यदि नहीं सुनता बोले गाड़ी में जी सर आओ दिन मैंने क्या होता है दिन मैंने क्या देरी करके क्यों आता है बोलो दिन मैंने क्या होता है दिन मैंने भी नहीं जानता क्या जानता है अच्छा आदि तुम बोलो तो दिन है दुखी है गृह में आसक्त है भोगों में आसक्त हैं अत्यंत अधिक वो उनके घर पर जाएंगे भी तो वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे तो संसार में सभी लोग ऐसा कोई है ही नहीं है जो दुखी नहीं है। जिनका पूर्व जन्म के इस जन्म के कुछ संस्कार ऐसे बने हैं जो उनकी कृपा को ग्रहण करने वाले हैं और जिनके अंदर में दीनता आई है थी संस्कार के वजह से दीनता। हाँ, हमारा आज अहोभाग्य है जो ऐसे एक महात्मा हमारे घर में पधारे। तो वो साधु संत से कुछ लाभ है जिनका भक्ति का या श्रद्धा इत्यादि का संस्कार नहीं है कोई उसमें ऐसे लोगों के मन ये लोग समझ रहे हैं कौन युधिष्ठिर महाराज और नंद बाबा अपने को ये भक्तिमान होते हुए भी दोनों भक्तिमान है साधु संघ को समझते हैं इसलिए साधु संघ की महिमा कारण करके
संसार में रहते हुए भी चारों प्रकार के मत से रहे
किंतु अपने को समझते नहीं। संसार में सबसे बड़ा दीन वह है जिनको साधु संघ नहीं मिलता है वो सब इससे दीन जगत में और कोई नहीं। ये लोग ऐसा समझते हैं कि हो मैं साधु संघ से वंचित हूं। एक बहुत उन्नत व्यक्ति भी यहां तक कि कोई भी भक्ति की तो बात क्या है रागानुगा में भी उसका प्रवेश हो गया है और उसकी भक्ति कुछ उनकी तक होने गई और साधु संघ नहीं है तो वहां से गिर पड़ेगा। भावावस्था में भी पहुंच करके उपयुक्त और संपूर्ण साधु संघ नहीं है वहां से भी गिर पड़ेगा। इसलिए रूप सनातन इत्यादि रघुनाथ दास के संघ परस्पर साधु संघ करते हैं भगवान की लीला कथाओं को इसी से समत और भक्ति बढ़ती रहती है और वो प्रेमावस्था को जाएगी अन्यथा भाव से सुख जाएगा और सुख करके नीचे लिंग गामी होकर के रखा कर सकता है। इसलिए साधु सिंह की इसलिए नंद बाबा यहाँ बैठी लज्जानी के उसने अर्थ बदला है। असल में भक्ति के द्वारा जब दीनता आती है सुना कभी सुने इतना नहीं आया उसका आभार में बन रहे तब वो वैष्णव की कृपा को ग्रहण करता अन्नकार दंभ पाखंड अहंकार कुछ भजन का भी अहंकार होता है वो भी आ जाता है। भजन करने से दीनता आएगी क्या कितना कुछ भजन नहीं सनातन की बातों को नहीं
सुना
एक पर्यायवाची शब्द अब दिनों दिन देखो दीनता सबसे अधिक किस में होगी जिसमें शक्ति अधिक होगी उसी में दीनता होगी। राय रामानंद कह रहे हैं कि मैं अस्पृश्य हूं आपने हमें स्पष्ट किया और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं दीन हूं मैंने तुम्हारा स्पष्ट किया अपने कल्याण दोनों तीन दिन और दोनों साधन भट्टाचार्य को कह रहे हैं अपने भाग्य के निमित्त साधु भट्टाचार्य ने हमको आपके पास में भेजा हमारे कल्याण के लिए जाओ उनके पास में उनके दर्शन से उनकी हरि कथा सुन करके आप समझे यहाँ कोई चीज कोई मिला था और ये कारण है कि हमारे ऊपर में साधु भट्टाचार्य ने आपको भेज करके हमारा कल्याण वो कहते हैं मेरा कर दोनों तीन दिन बंद। अच्छा यदि दीनता स्वाभाविक है भक्ति का गुण है तो जिसमें सबसे अधिक भक्ति होगी उसमें दीनता भी सबसे अधिक होगी। तो राय रामानंद ने और महाप्रभु जी ने भक्ति किसमें अधिक है दोनों आदमी जी होता है, दिन में दोनों में खड़ा
है,
दोनों ने ये विचार किया गया है। महाप्रभु तो अभी बताने में सब भक्ति के रस के सागर में, और उन्होंने अपनी कुछ कृपा संचरित की, सब वो भक्ति रूपी मेघ से वो बातें आई, तब महाप्रभु जी रक्षा कर दिए। तब इसके द्वारा तो मालूम होता है कि भक्ति का स्थान
अंतर
जाति, वो महाप्रभु जी रस के समुद्र है, भक्ति के समुद्र, तो इनमें चिंता हुई। और जब किसी तरह से विचार करते हैं रामानंद में जो चीज है आश्रय जाति विभाग, उसको सीखने के लिए महाप्रभु के पास में आए हैं वो चीज में, तो ये इस जाति की भक्ति, भक्ति भगवान की भक्ति को भक्ति नहीं करते, तो भक्ति का अर्थ साधन करते हैं। इसलिए भक्ति कहाँ हुई, आश्रय जाति, जिसका भगवान आस्वादन मात्र करते, इसलिए दिवसा हिंदी में अभी सुनते हैं। और जब दूसरी तरफ से विचार करते हैं तो भगवान भक्ति है, भगवान जैसे देखो ये जिसने पैर मारा भृगु, भृगु के समस्त सनंदन सनत कुमार के चरण वंदन करते हैं, सबके ये मूल है अवतारों के, और वे समस्त सनंद कुमार के चरणों की वंदना करते हैं, ये है जीवन प्रभु। और रामानंद यहाँ भक्तों में खिला नहीं है, विशाखा जी इनमें अक्षय जाति भक्ति अत्यंत अधिक है, इसलिए तुमने चिंता ली है। दोनों में चिंता दो प्रकार की, उनका अक्षय जाति, इनका विषय जाति, दोनों का। इसमें जब हम विचार करेंगे अपनी दृष्टि से अक्षय जाति के दूसरे का विचार करेंगे, तो वहां पर देखेंगे रामानंद जी की जो भिन्नता है। महाप्रभु कह रहे हैं कि साधन भट्टाचार्य ने हमको भेजा और मैं आपके पास आया, और ये जो ब्राह्मण इत्यादि है जितने लोग, ये आपकी आप महा महाभागवत उत्तम है, आपको देखने से ही उनको प्रेम आया। और रामानंद कहते हैं कि आप भगवान हैं, इसलिए आपके दूरदृष्टि से ही इनमें प्रेम आया। तो अब दोनों में दृष्टि संगत कौन सी चीज देखती है, रामानंद की बात या महाप्रभु की? जब हम विचार करते हैं ना, तो हम उनके प्राथमिक पक्ष हो जाता है रामानंद की, हम कहते हैं जय रामानंद जो पाते हैं वही बात
हो
जाते हैं। देख करके क्या कहेंगे, सचमुच में ही और जगत ही लिखा है दूर दर्शन से महाप्रभु जी का दर्शन से ही सम्मिलित हो जाता है, ये बात सच्ची लगती है रामानंद की। इसलिए ब्राह्मणों की जो प्रेम की भक्ति हुई वो किसको देख करके हुई, अरे रामानंद को तो वो ही देखते हैं, तो वो गदगद क्यों नहीं होते? और आज जो गदगद हुए देख करके, किसका हरि बोल सुन करके,
दोनों का व्यवहार देखकर,
महाप्रभु जी का
करुणा की मूर्ति,
क्यों रामानंद की दीनता को वो नहीं देख रहे हैं, महाप्रभु जी की जो दीनता है वो ऐश्वर्य मिश्रित है, और ये लोग हैं वैसे ना, इसलिए उनको तो दिखाई पड़ गई। अम्मा दुर्गे वाली जो दीनता है रामानंद में है वो नहीं दिखाई। जब ये सब विशेष रूप में सब विचार करते हैं, सब ये सताते हैं। थोड़ी देर के बाद में ब्राह्मण आया, एक इनकी बातें चल रही थी, ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया, महाप्रभु जी ने उसको स्वीकार कर दिया। महाप्रभु जब जाने लगे तो रामानंद उनको दंड, महाप्रभु जी ने कहा तुम्हार मुखे कृष्ण प्रसाद सुनते भय मन पुनरपि पाई जेनो तुम्हार, तुम्हारे मुख से कुछ हरि प्रसाद सुनने की लालसा हो रही है,
क्योंकि सार्वभौम ने बतलाया है आप हरि कथा के आधार समुद्र हैं। मैं आपसे कुछ सुनना तो वो तो नहीं था किंतु ये संक्षेप लीजिएगा, मैं आपके मुख से कुछ हरि कथा सुनना चाहता हूं। महाप्रभु जैसे लोग स्वयं भगवान अच्छे ये भी सुनना चाहते हैं, ये चतुराई करके कह रहे हैं न वो स्वाभाविक रूप से सत्य कह रहे हैं। प्रभु भक्तों के मुख से अपनी लीला के उत्तरों को सुनने में इतना आनंद होता है कि उसमें रम जाते हैं। इसीलिए रात के समय में अंतर ध्यान होने हुए थे, इसीलिए कि गोपियों के मुख से ऐसी ऐसी सब बातें सुने, कुछ वो दुख मिश्रित होकर के, कुछ क्रोध मिश्रित होकर के, कुछ गालियां झुककर, कुछ सीधी शादी, कुछ उल्टी सीधी, ये सब प्रकार की मिश्रित ये सब सुनेंगे जो और कहीं नहीं सुनते और उन्होंने सुना भी वैसे। इसीलिए कहते हैं कि गोपियों की बातों को सुनकर के भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वेदों के, ब्रह्मा इत्यादि के, स्तुतियों के, पौ इत्यादि के द्वारा जो प्रसन्न नहीं होते उसके द्वारा भी। इसलिए स्वाभाविक रूप में ही चैतन्य महापुरुष राय जी कह रहे हैं, राय पर विनाश करती तो ये नृसिंहानंद जी ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ हरि कथा सुनना चाहता हूं। ये हरि कथा सुनना चाहता है तो जाओ राय रामानंद के पास में सुनो, जिससे मैंने हरि कथा सुनी है उनके पास में जाओ। सरल विप्र वो चला गया, वो जा करके देखा तो वो स्त्रियों की सेवा में लगे हुए थे, जो कि लड़कियों की सेवा देवदासियों की, तो उनको विरक्ति दी। ये क्या साधु संत गृही और स्त्रियों की सेवा में लगा हुआ है, चले अरे हरि कथा सुन लिया पर जब सुना तो सुना नहीं तो लौट आए तो कुछ बोले नहीं मौन से ठीक फिर जाओ जाकर के फिर सुन ठीक है। इस बार उन्होंने अभी कैसे आए आपके दर्शनों से कुछ हरी कथा सुनने क्या सुनना चाहते हो, मैं कह जो आपने कुछ महापुरुष जी को सुना इसलिए भगवान भी कहते हैं कि जाओ भक्तों के निकट, मैं उतनी अच्छी तरह से हरी कथा नहीं बोल सकता हूं जो कि भक्तों को बोल सकते, वो प्रेम में पदे हुए होते हैं और हमारी लीला चरित्र को अच्छी तरह से बोलते हैं, मैं अपनी लीला कथाओं को मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए फिर राय जी इसका उत्तर देते हैं, आइए राय कहे आइए यदि पामक सूखी दे दर्शन मात्र शुद्ध में मोर दुष्ट चित्त, आप आए ये बात तो ठीक है और दर्शन से हमें शोधन कुछ किया, दर्शन से शोधन किया लोगों के अंदर में कामनाएं वासनाएं इत्यादि तरह तरह की चीजें होती हैं, सबसे बड़ी दूरी है वासना। कर्मों के फल भोगने से भी प्रायश्चित करने से भी वासना नहीं जाती, आग लगा देने से बांस जल जाएगा किंतु मिट्टी की जो जड़ें हैं वो नहीं जड़ती जलती, फिर वर्षा होने पर फिर से वो बांस आ जाता है। दूध की घास का भी ऐसे है, दूध की घास सूख जाएगी ऊपर से, जंगल में कहीं नहीं घास सब सूख रही और जहां पानी पड़ा उसे तो फिर हो जाए, ऐसे ही ऊपर से कुछ प्रायश्चित हो गया ये सब हो गया किंतु वासना कर्मों की जो है वो नहीं जाती, संतों के संग से वासना की जाती किंतु एक दिन में नहीं जाएगी धीरे 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 जाएगी। तो वही कारण दर्शन मैंने आपका किया किंतु हमारा दुष्ट मन है बहुत अधिक मलिन हो गया है, आपके एक दिन के दर्शन से नहीं होगा, बार बार दर्शन करने से हरि कथा सुनने से ही होगा। साधु संग में यदि हम जाते हैं, साधु कोई यदि वो शुद्ध कोटि के साधु साधक हैं भागवत हो तो कोई कथा न बोलेंगी तभी उनके पास में जाने से ही अपने आप पवित्रता आ जाती। जैसे सुना है अगस्त ऋषि के आश्रम में कोई भी जाता था सब पाणी में तो अहिंसक हो जाता, संतों के पास में जाने से चित्त अपने आप निर्मल हो जाता है, उनके हृदय से ऐसी किरणें निकलती हैं भक्ति की किरणें निकलती हैं जो कि लोगों के चित्तों को प्रभावित करते हैं। किरासन का तेल जहां रहता है उससे भी यदि गंध निकल करके दूसरों के वो दुर्गंध बना देता है तो क्यों नहीं चाहते लोग किन्हें वस्तु भक्ति ऋषि में उनका संग करने से क्यों नहीं फल होगा, निश्चित रूप में फल होगा, ऐसा साधु संघ का फल है। तो वो कारण किंतु धीरे धीरे होगा, कहते गंगा के दर्शन से स्नान से चित्त पवित्र होता है, ये बात तो ठीक है किंतु एक बार करने से नहीं होता, पुनः 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 सेवन करने से तब हो सकता। एक महीना रहिए भोगों को छोड़ करके, शीतकाल में मार्च के महीने में प्रयास में रोज जरूरी स्नान कुछ चित्त पवित्र होता। साधुओं के दर्शन से अपने आप उसी समय में हो जाते हैं जब भी साधु बढ़ते हैं।
अच्छा गंगा के स्नान से वासना समाप्त हो
जाए, उसकी प्राप्ति होने का उल्लेख कैसा था, वासना प्राप्ति गुरु के बिना कैसे चला जाएगा। तो
साधु संघ में तो न पाऊं धर्म दिया हम जब तक
ठीक है। जैसे ये सदर के इतने पुत्र थे जो मर गए थे उनकी वासना तो थी, तो गंगा के स्पर्श से वो वैकुंठ में चले गए, तो कैसे चले गए, वासना को भी दूर कर सकती है गंगा, क्योंकि भगवती है भगवत संबंधी है भगवान की शक्ति है,
गंगा स्पर्श होने पर होगा विष्णु दर्शन से होगा।
तो साधु लोग उससे भी अधिक हो, किंतु साधु साधु होना चाहिए भाई, नामधारी ये सब नहीं। जैसे प्रयाग में जो ये होता है ना स्नान कुंभ का, 1,00,000 नागा तलवार फांसते हुए फटका उठाए हुए बीड़ी सिगरेट सूखा चलाते हुए चलते हैं, हाथियों पर घोड़ों पर ऐसे ही चलते हैं, और कोई मिल गया ना और उनके राशन बाधा दिया तब सीट पास करके बाहर कर इसे दो दरवाजा लोग बंद कर देते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं और जहाँ घाट पर स्नान करें घाट पर कोई जाएगा नहीं, स्नान करके जब चले जाएंगे। ये लोग साधु नहीं कि नहीं, साधुता से कोई भी संबंध नहीं, इनका संग करने से वैसे ही गजेड़ी फलेड़ी बदमाश लोफर और अहंकारी बन जाएंगे। ये सब साधु चित्त जिनका निर्मल है भगवान में जिनका चित्त है ऐसे लोगों का संग होने से उन्होंने वो कह रहे हैं 10-5 दिन यहाँ पर रहिए, 5 साल करो मार्जन सबे शुद्ध है मोर एक समा सब हमारा मन दुष्ट होगा। साधु संघ में भी जिनके मन के ऊपर में अधिक कामनाएं वासनाएं और कालिमाएं हैं वो 2-1 दिन में साधु संघ से नहीं होगा, एक तो साधुओं की बातों को ग्रहण नहीं कर सकेगा। साधु संघ लगाते हुए धीरे धीरे कुछ दिन रहते रहते 2-4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष रहे और सचमुच में हृदय निर्मल करके उनकी बातों को ग्रहण करने की चेष्टा करे और आचरण में उनकी बातों को लाए पक्ष। साधु संघ जब ठीक से होना 1 मिनट में भी उसका चित्त हो सकता है, ऐसे भी उसके उदाहरण। इसलिए कहते हैं यहां तक उसकी नहीं प्रहलाद महाराज के उपाख्यान में याद तो पता है जात स्थान
रास्ता बंगे नही दैते या जातु धाना भगाम भेजा
ये सब
धर्मा अवसर असु नागा सिद्ध चरण
मनुष्य की तो बात क्या, ये सब जितने भी असुर नाग किन्नर देवता यक्ष असुर मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग ये महाराज दशरथ की कृपा हो गई तो जटायु जी हनुमान जी का संग आया तो विभीषण सुग्रीव ये सभी उत्पन्न हो गया। प्रहलाद महाराज जी का आसन हुआ तो प्रहलाद असुरों के जितने देव जितने बालक थे वो सब लोग इसी तरह। इसलिए साधु संघ में चित्त स्थिर कर चरण रहना चाहिए और कुछ यदि न के भी करें सतान प्रसन्न नाम भविष्य संबित भवन करी सतरण रसायन तथा सज्जो सनात आसु अपवाद बुभत मणि सदा रक्षी भक्ति। बस उनके संग में और कथाओं को सुनते रहे, अपने आप जो कुछ करना होगा वो हरि कथा करा दें, क्रमशः उसमें साधन भक्ति भाव भक्ति और अंत में किसी भी स्थिति में साधु संग छोड़ा न जाए, ये हमारे ऊपर में निर्भर है। देखो जो उसका फल जरूर होगा, यद्यपि विच्छेद विच्छेद तुम्हार सहन न जाए तथापि दंड तक अभी चली जा रहा है, जब तक कि दोनों को दोनों नहीं छोड़ना चाहते, नारायण मन छोड़ देना चाहते हैं और महाप्रभु उनको छोड़ना चाहते हैं। भला विशाखा का संग आज बहुत दिनों के बाद में हुआ, उसको कृष्ण कैसे छोड़े न? और उधर कृष्ण का संग हुआ है बहुत दिनों के बाद में, तो विशाखा जी उनका संग कैसे छोड़े, किंतु फिर भी नरलीला है ना, नरलीला का अनुरूप छोड़ना। इसलिए दोनों नहीं छोड़ने से भी तथापि राय रामानंद जी ने उनको दंडवत किया, दंडवत किया सन्यासी के लिए। तो राय रामानंद का उम्र बहुत अधिक है, किंतु वर्ण और आश्रम की दृष्टि से महाप्रभु जी सन्यासी है, ब्राह्मण है और वो राजा है, विषयी है और शूद्र जाति, इसलिए उनको प्रणाम किया। किंतु भक्त लोग ऐसा विचार कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। हम लोग का जहां पर राय रामानंद जी और वो खड़े हो ना, तो हम तो पहले राय रामानंद जी को प्रणाम करें, सब कृष्ण को प्रणाम करें, ऐसा ही होना चाहिए। प्रभु जारी से विप्र भरे भिक्षा से विप्र घर में, किंतु सोच क्या रहे हैं, दूजना उपग्रंथ है आशीष संघ है बल, वो घर गए राजसाज्य में राजभवन में और ये आए ब्राह्मण के घर में और भी काम करने गए, किंतु उत्कंठा क्या उत्कंठा हो रही, कब मिले कब 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 और कब समझा, अब दिन बीती नहीं रहा, बीती नहीं रहा, कब वो समझा होगी और कब वो आएंगे और फिर हरिकथा होगी। और रामानंद से कब समझा हो तो मैं वहां जाऊं और हरिकथा हो जाऊं उससे मिलन हो, ऐसे ही उत्कंठा। कब समझा हो, कब 6 बजे और हम लोग कथा सुनने के लिए जाए, अच्छी अच्छी कथा। तो ऐसे ही इनके हृदय में दोनों उत्कंठा, भक्ति के लिए हरि कथा के लिए उत्कंठा होनी चाहिए, तो ये हरि कथा ही भक्ति है। हरि कथा क्या है, भक्ति को उत्पन्न करती है ना, भक्ति है यही स्वरूप सिद्धा भक्ति। जिनको हरि कथा सुनने से भक्ति होगी उनकी भक्ति अभी स्वरूप सिद्धा नहीं है, वो भक्ति का मर्म नहीं जानते। जिन्होंने हरि कथा को ही भक्ति मान लिया वही विचार की, ये हरि कथा श्रवण यही भक्ति है। और किसी के लिए जो भी साधन है, जिसको रुचि इत्यादि नहीं है, जिनकी रुचि उत्पन्न हो गई है, उन लोगों के लिए वो और 1000 साधन छोड़ करके हरिनाम करना छोड़ करके भी हरि कथा में आएंगे। क्यों, हमारा नाम जो है अभी नाम हो रहा है कि नहीं, हमारा भजन करना भजन हो रहा है कि नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है, हमारा अधिकार रहता नहीं। जो कथा सुनता हूँ वो तो हमारे अधिकार की ऊपर की बात है, इससे हमारा बहुत कुछ लाभ होगा, ऐसा समझ करके हरि कथा सुनना चाहिए। उत्कंठा दूजना उत्कंठा आती संख्या है, जिसका तात्पर्य ऐसा मालूम हो रहा है उनकी उत्कंठा देख करके ही मानव संख्या जल्दी से होगी ना, दूजना उत्कंठा आती संख्या है, समझा, किंतु उनकी उत्कंठा इतनी है कि वो सब समय चिंता कब शाम हो कब शाम हो और कब से कब तक शाम हो। महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं, वो तो जल्दी से आ जाएंगे, वो तो आ गए रामानंद महाप्रभु। प्रभु स्नान कृत्य करी आखिर बची है बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं रामानंद स्नानिया तो सवेरे की बात हो रही है नहीं। ये संत लोग विशेष करके जो वानप्रस्थी होते हैं और सन्यासी, इन लोगों के लिए तीन बार स्नान की विधि है, चाहे शीत हो चाहे ग्रीष्म हो चाहे गुरु, तीन बार, तो तीन बार स्नान। तो सवेरे का स्नान तो कर लिया है, महाप्रसाद भी हो गया, इसके बाद में दो बार का भी हो गया है, अब ये तीसरे समय संध्या का समय का भी वो स्नान कर रहे हैं, स्नान करके आंधी करके और सब वो बैठे हुए हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु स्नान की चकरी आखिर बसिया एक दृश्य संगे राय मिली राशि, केवल एक भक्त को संग ले दिया और किसी को भी नहीं दिया, भक्त को दिया लेकर के साधारण देश में आए, कैसे देश राजकीय देश में नहीं आए, एक कपड़ा धोती पहनते हैं, धोती का एक भाग लपेट लिया एक कमर पर और उसी को लंबी सी धोती होती है जो ऊपर से मिलती, साधारण रूप में ब्राह्मण लोग भी ऐसे ही करते थे, साधारण ऐसे ही वो काम होता है, इसलिए लंबी धोती इसलिए होती है और उसके साथ में प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम शरीर खुला रहता है, सब प्रकार के कृत्य को करने में सुविधा होती है, बस उसी रूप में साधारण से साधारण रूप में एक वस्त्र में उनके साथ नमस्कार पैदा रहा है। प्रभु पैदा अनिमित तू जने कृष्ण कथा कय के रामानंद ने उनको प्रणाम किया, महाप्रभु ने देखा जरा रामानंद आ गए, उठ करके खड़े हो गए, अब वो झुक करके प्रणाम करेंगे दंडवत वो जानते हैं, इसलिए उसके पहले ही झट कुछ आगे बढ़ करके उनको पकड़े और वैष्णव किसी को इस प्रकार से प्रणाम नहीं करने देते, यदि बराबरी का हो या अशिष्ट हो कोई तो उसको सब जो उच्च व्यक्ति भी होता है, मान लें कि एक महाभाग होता दूसरा एक महाभाग होता है तो दोनों का मिलन कैसे होगा, वो सख्त भावार्थ कुछ होते हैं, भले ही दोनों में सत्सम्य तो कुछ जरूर होगा किंतु दोनों महाभागवत जैसे रामानंद और स्वरूप दामोदर दोनों मिले क्या होगा, दोनों में कौन और अधिक और बड़ा हम लोग तो विचार नहीं कर सकते, अच्छा कुछ विचार है सारसम किंतु वहां पर विचार का नहीं कर सके, दोनों जब मिलेंगे ना वो उनको प्रणाम नहीं करने देंगे, वो उनको प्रणाम दोनों आलिंगन में नमस्कार करिए या दंड बस इतना है। प्रीति के लिए हम लोगों का कभी कभी होता है बिना प्रीति के ही प्रणाम कर दंडवत प्रभु मुक्त दंडवत प्रभु, अन्यथा तो ऐसा किया फिर भी मट्टी में फेंका कि नहीं फेंका कोई भी बात नहीं, कभी क्यों आया बेटा का ये चला जाता था क्या यहाँ पर खाएगा पिएगा संजय बढ़ा दिया अजय कंडो प्रभु जी फिर भी कह देते, ये प्रणाम का कोई मतलब नहीं। अब दोनों में कथा आरंभ हुई, हम लोग की कथा आरंभ होगी ईश्वर से है। अच्छा भाई देखो आ जाओ उनको जा पानी नहीं खिला दो तो भोजन करके तो आय नहीं हो, उनको भोजन सोजन कराओ सब ये है भी, किंतु यहाँ पर जहाँ पर भक्ति का विचार होता है वहां पर पहले यही होता है और कोई चर्चा ही नहीं हुई, महाप्रभु जी ने एकदम आरंभ कर दिया हरि कथा, प्रभु कहे पड़ोस लोग साथ जन्म ले रहे हैं, राय कहे सब स्वधर्म आचरणे विश्व भक्ति खूब सावधानी से सुनेंगे, विचार करेंगे और अपने जीवन में भी आचरण करेंगे, तब तो ये काम है। और विचार नहीं किया सुन करके बस छोड़ दिया, हम तो सुना नहीं तो बस नहीं सुना, इसका लाभ उठाओ। चैतन्य चैतामृत का एक सुंदर सत्य चिंतामणि रत्न है, ये यदि कोई समझ लिया और फिर इसकी उपलब्धि के लिए चेष्टा रही उसको विज्ञान में परिणित करने के लिए तो बहुत सहायक होगा, बहुत सहायक होगा। इसे झट प्रेमा भक्ति का आविर्भाव होगा। तो प्रभु कहे पढ़ो श्लोक सात धर्म है, पढ़ो श्लोक सात धर्म, ऐसा कोई श्लोक बतलाओ जिससे साध्य का निर्णय होगा, ऐसा श्लोक बतला। उन्होंने ये कहा साध्य जो वस्तु होती है जीवन के लिए ये अप्राकृत होती है, जो सबसे उन्नत साध्य है, जिनके बहुत से साध्य और साधन नहीं है, एक ही साध्य है पर किंतु उसके ऊपर में जीव के ऊपर में स्थूल और निम्न शरीर का आवरण होने से अभी बहुत तरह के साध्य और साधन बन गए, एक ही नहीं लाख तरह के साध्य। और पहले सुनिए जैसे साध्य किसको कहते हैं, साधन किसको, साध्य उसको कहते हैं जिसकी हम अभिलाषा करते हैं और अभिलाषा करके जिसके लिए हम तरह तरह के उपाय करके जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं उसको कहते हैं साध्य। जिसकी हम अभिलाषा जिस वस्तु की करते हैं और उसके लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करने पर वह वस्तु जब मिलती है तो उसको कहते हैं साध्य। और उस साध्य वस्तु को पाने के लिए हम जो कुछ प्रयत्न करते हैं उसको कहते हैं साधन, ये साधारण की बात। यहाँ पर नारायणानंद और महाप्रभु में जो विचार विनिमय हुआ है इसमें वर्णाश्रम धर्म से लेकर के अंतिम सोपान गोपी भक्ति, गोपियों की भक्ति तक जो ले गए हैं वो एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये सब अलग अलग स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि एक सीढ़ी एक सोपान बतलाया, जैसे गीता में गीता जो है ना अलग अलग साधन नहीं है, उसमें पहले कर्म फिर कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये एक ही सोपान में क्रमशः नीचे से ऊपर तक श्रेणियां चली गई, उसमें तो है। किंतु यहाँ पर किसी से किसी का अपना संबंध नहीं है, ये सभी पृथक पृथक चीजें हैं। इसे बतला करके हम समझाएंगे, सोपान नहीं है, एक क्रम से नहीं बतलाया, जैसे आदव श्रद्धा तथा साधुसन अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ये सब क्रम है। इससे बिना एक के आप उल्लंघन करके नहीं जा सकते, किंतु इसमें ऐसा नहीं है, एक एक साधन एक एक साधन। अब जैसे हम लोग चल रहे हैं आगे, सबसे उत्तम जीव के लिए साध्य और साधन क्या है इस पर विचार करने के लिए हम चाहिए सबसे से। तो जीव का पहले स्वरूप निर्णय कर, जीव है कौन, ये शरीर जीव है ना दूसरा कुछ है। यदि शरीर जीव है तो इसके तो बहुत से साधन है, इसको खाने की जरूरत है, पहनने की जरूरत है, इसको कुछ रुपए की जरूरत है, इसको कुछ सगे संबंधियों और विवाह से इसकी इत्यादि की जरूरत है, बहुत तरह की इसकी जरूरत है। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ हम करेंगे वो साधन होगा, और जब वो जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो हमारे लिए वो साध्य हो जाएगा। किंतु शरीर हम है नहीं, इसलिए शरीर का भोजन आच्छादन और शरीर का भोग यह अंतिम साधन नहीं है, साध्य नहीं है। मोक्ष को मोक्ष भी साध्य हमारा नहीं है। जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ममई वांसो जीव लोके पर सनातन, जीव भगवान का अंश है। और भी समस्त शास्त्रों में यह सही बतलाया गया, जीव सेवक है और मनुष्य स्वरूप से। अब स्वरूपगत जो जीव की भगवान के प्रति सेवा है यही हमारा मूल कार्य है। स्वरूपानुबंधी भगवान की सेवाएं ही हमारा कार्य है, स्वरूपानुबंधी होना चाहिए। स्वरूपानुबंधी मैंने अभी हमारा जो ये रूप है ये स्वरूप नहीं है, इसलिए इसकी आवश्यकताएं हैं, हमारा साध्य नहीं है। अच्छी तरह से समझे, मुख्य इत्यादि जीव का काम में नहीं है, वो स्वरूपानुबंधी नहीं है। इसलिए जहां तक यह भाव नहीं आया तब तक महाप्रभु जी ने कहा यो बाह्य यो बाहरी, जहां उसका कुछ भाव आया यो है, और जहां पर पूर्ण रूप से आया वहां पर कल है सर्वोच्च, और जब उससे भी अंतिम चरण आया तो यह सर्वोत्तम में भी सर्वोत्तम। इसलिए जीव का स्वरूपानुबंधी स्वरूप संबंधी जो अपना भाव है भगवान के प्रति, अर्थात तो भगवान को खुश प्रसन्न करना, भगवान की स्तुति विधान करना, वो जो है वही जीव का निश्चय। मोटा मोटी ये समझ लो भगवत प्रीति ही जीव का चरम था। इसलिए चैतन्य चैतन्य जी कृष्ण प्रेम को बताया चरम प्रयोजन, ये चरम प्रयोजन ही जीव के लिए था। अब यही चरम प्रयोजन भी प्रेम तो कह दिया एक शब्दों में, किंतु पांच प्रकार के प्रेम हैं। उन पांचों प्रकार में से सबसे श्रेष्ठ है मधुर का, और वो भी कितने प्रकार का है, बहुत प्रकार का। उसमें से तुम्हारा क्या स्वरूपगत है उस पर विचार किया। तो यहां कह रहे हैं पड़ोसु अचिंता दे फल भावा मनोकांक्षे न जो दे प्रकृतिभ्य परम जस्य जब अचिंत लक्षण। संसारिक जो सुख सुविधाएं हैं साध्य और साधन इस पर तो हम विचार कर रहे हैं, जैसे हमको रुपये की जरूरत है तो या तो वाणिज्य व्यवसाय करेंगे, नहीं कहीं नौकरी करेंगे, नहीं चोरी चमारी डकैती करेंगे, यही तो और क्या उपाय है। यदि हमें नौकरी करने की और नौकरी नहीं हो रही है वाणिज्य व्यवसाय करने, वाणिज्य व्यवसाय भी करने के लिए पैसे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आगे, कोई नौकरी नहीं मिल रही, वाणिज्य व्यवसाय भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे। और जैसे आजकल के बच्चे सब क्या करते हैं, डकैती चोरी लूट मार ये सब करते हैं, आजकल की शिक्षा भी ऐसी है, तो वो चोरी कैसे करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति से आजकल सीख करके करते हैं, ताला को किसी चीज से छू दिया और वो खड़ करके नीचे गिर गया और अपने आप छू गया, और उसके पहले ही जंगले से कोई चीज थोड़ा सा पंप कर दिया इंजेक्शन से और वायु वहां का ऐसा हो गया जो मूर्छित होकर सोए रह गए और घर से सब कुछ निकाल सके, वैज्ञानिक पद्धति से सब कुछ ले सके, ये सब तो हो जाएगा। किंतु जो अप्राकृतिक चीज है प्रेम, भाई ये अपने मन से नहीं होगा, ये कभी संभव नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं अचिंता के खल भावा न तांत करके जो साध्य और साधन इस जगत संबंधी है वो तो हम कर लेंगे अपने विचार से और दूसरों के विचार से कर लेंगे, किंतु जो अचिंत अलौकिक है अप्राकृत जो है उसके लिए शास्त्र का प्रमाण ये चाहिए। क्यों? शास्त्र अभ्रांत होते हैं, वो भी सब नहीं, वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां और उनके अनुकूल जो शास्त्र होते हैं वो रामायण, महाभारत और इन सब में मूल प्रमाण श्रीमद् भागवत। क्यों? ये भगवान ने अपने पाने के लिए, कृष्ण प्रेम को पाने के लिए अपने मुख से जो उपाय बतलाए किंतु भागवत धर्म पर भगवान के वचन में कहीं भी धर्म प्रमाद की प्रतीक्षा करना पाता नहीं है। ये सब न कहीं बतलाया था इन कारण, न किसी को ठगना चाहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से सबका कल्याण चाहते हैं। उनकी इंद्रियां अपटु अटक दूर और थोड़े के कोई प्रश्न नहीं है। हम तो यहाँ से देखेंगे वो आ रहा है, यहाँ आएगा तो देखेंगे और दूसरा है। इस तरह से भगवान में न कपटता है, न इंद्रियां उनकी किसी में है, न उनमें भ्रम प्रमाद हो सकता है, इसलिए उसे बचने में भी